नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9-3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेफ जॉनसन की पुस्तक डिजाइनिंग विद द माइंड इन माइंड यूजर इंटरफेस डिजाइन के नियमों को मनोविज्ञान की दृष्टि से समझाने वाली व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है। इसका केंद्रीय तर्क यह है कि अच्छे इंटरफेस केवल प्रचलित दिशा निर्देशों की सूची मान लेने से नहीं बनते। डिजाइनर को यह जानना चाहिए कि लोग स्क्रीन पर वस्तुओं को कैसे देखते हैं, ध्यान किस ओर जाता है, सीमित स्मृति में क्या रख पाते हैं और निर्णय कैसे लेते हैं। जॉनसन का उद्देश्य संज्ञानात्मक तथा प्रत्यक्षण संबंधी शोध को इतना सुलभ बनाना है कि डिजाइन नियम सहज और तर्कसंगत लगे। पुस्तक विशेषतः इंटरेक्शन डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, उत्पाद दलों और उपयोगिता परीक्षकों के लिए उपयोगी है। यह कठोर नुस्खे देने के बजाय नियमों के पीछे के कारण स्पष्ट करती है, इसलिए पाठक अलग उपकरणों, उपयोगकर्ता समूहों और परियोजना सीमाओं में उचित समझौते कर सकता है। इसकी शैली उदाहरण आधारित है, जिससे अमूर्त मनोविज्ञान को वास्तविक स्क्रीन नियंत्रणों, संदेशों और कार्य प्रवाह के संदर्भ में समझा जा सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजाइन नियमों के पीछे मनोवैज्ञानिक तर्क को समझना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान डिजाइन दिशा निर्देशों को अंतिम सत्य मानने के बजाय उनके कारणों तक पहुंचना है। किसी नियम में कहा जा सकता है कि विकल्प स्पष्ट हो, आवश्यक सूचना सामने हो या नियंत्रणों का रूप उनके काम से मेल खाए, पर केवल नियम याद रखने वाला डिजाइनर तब उलझ सकता है जब दो नियम आपस में टकराए, स्क्रीन छोटी हो, समय कम हो या उपयोगकर्ता का काम असामान्य हो। जॉनसन इस समस्या का समाधान प्रत्यक्षण और संज्ञान की मूल सीमाओं को समझने में देखते हैं। यदि डिजाइनर जानता है कि उपयोगकर्ता दृश्य संकेतों से अर्थ जल्दी बनाते हैं, ध्यान सीमित होता है और स्मृति पर बोझ बढ़ने से त्रुटियां बढ़ती है, तो वह नियम को संदर्भानुसार लागू कर सकता है। इस दृष्टि में दिशा निर्देश निर्णय लेने के उपकरण बनते हैं, चेकलिस्ट नहीं। उदाहरण के लिए, अधिक विकल्प दिखाना कभी खोज को आसान बना सकता है, लेकिन वही विकल्प असंगठित हों तो तुलना कठिन हो जाती है। तब समाधान किसी एक सार्वभौमिक नियम का पालन नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के लक्ष्य, सूचना की संरचना और मानसिक प्रयास का मूल्यांकन है। पुस्तक इसी प्रकार डिजाइन चर्चा को व्यक्तिगत पसंद से हटाकर मानव क्षमता और सीमा पर आधारित तर्क की ओर ले जाती है। दूसरा, दृश्य प्रत्यक्षण के अनुसार स्क्रीन पर सूचना का संगठन। जॉनसन के ढांचे में लोग स्क्रीन को अक्षरशः एक समान गति से नहीं पढ़ते। वे आकार, निकटता, संरेखण, रंग, विरोधाभास और समूहों जैसे दृश्य संकेतों से तेजी से पैटर्न पहचानते हैं। इसलिए इंटरफेस में सूचना की व्यवस्था केवल सजावटी निर्णय नहीं है, वह अर्थ और कार्य दोनों को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तुओं को पास रखना, असंबंधित वस्तुओं के बीच पर्याप्त अंतर देना और शीर्षकों के माध्यम से समूहों का संकेत देना उपयोगकर्ता को यह समझने में सहायता करता है कि क्या एक साथ जुड़ा है। इसी तरह महत्वपूर्ण नियंत्रण को दृश्य पदानुक्रम में उभारना उपयोगकर्ता का ध्यान उचित स्थान तक पहुंचाता है। पुस्तक यह भी संकेत करती है कि रंग या आकार का उपयोग अकेले अर्थ बताने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दृश्य संकेत परिस्थिति और उपयोगकर्ता के अनुसार अलग तरह से समझे जा सकते हैं। स्पष्ट लेबल, स्थिति और संरचना सहायक संकेतों का काम करते हैं। इसका व्यावहारिक परिणाम यह है कि डिजाइन समीक्षा में टीम को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि स्क्रीन सुंदर है या नहीं, उसे पूछना चाहिए कि पहली नजर में उपयोगकर्ता क्या देखेगा, कौन सी वस्तुएं एक समूह लगेंगी और अगला कदम कहां स्पष्ट होगा। दृश्य संगठन इस तत्काल समझ को मजबूत करता है। तीसरा, सीमित कार्यस्मृति के कारण पहचान को याद करने पर प्राथमिकता। पुस्तक के संज्ञानात्मक पक्ष का एक मुख्य विचार यह है कि मानव कार्यस्मृति सीमित है। उपयोगकर्ता यदि किसी नाम, आदेश, नियम या पिछले चरण की जानकारी को मन में बनाए रखने के लिए मजबूर हो तो कार्य धीमा और त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इसीलिए इंटरफेस को ऐसी जानकारी और विकल्प सामने रखने चाहिए जिनकी उपयोगकर्ता पहचान कर सके, बजाय इसके कि उसे उन्हें याद करना पड़े। परिचित लेबल, दिखाई देने वाले आदेश, चुने गए विकल्प की स्पष्ट स्थिति और चरणों के बीच आवश्यक संदर्भ बनाए रखना इसी सिद्धांत के व्यावहारिक रूप है। यह बात विशेष रूप से लंबे फॉर्म, बहुचरणीय प्रक्रियाओं और ऐसे कार्यों में उपयोगी है जहां उपयोगकर्ता बीच में बाधित हो सकता है। उदाहरणतः यदि किसी चयन का परिणाम अगले पृष्ठ पर भी महत्वपूर्ण है, तो उसे दिखाते रहना उपयोगकर्ता को मानसिक रूप से पीछे लौटने से बचाता है। हालांकि पुस्तक इसे हर परिस्थिति में अधिक सूचना दिखाने का आदेश नहीं बनाती, बहुत अधिक स्थायी सूचना भी ध्यान भटका सकती है। सही संतुलन वह है जिसमें वर्तमान निर्णय के लिए जरूरी संदर्भ उपलब्ध हो, लेकिन असंबंधित सामग्री प्रमुख न बने। इस प्रकार स्मृति संबंधी सिद्धांत स्पष्टता, निरंतरता और त्रुटि रोकथाम के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा, मानसिक मॉडल और परिचित संकेतों से उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं का सम्मान। लोग किसी नए इंटरफेस को खाली मन से नहीं देखते, वे पहले के सॉफ्टवेयर, रोजमर्रा की वस्तुओं, भाषा और प्रचलित डिजिटल व्यवहारों से बनी अपेक्षाएं साथ लाते हैं। जॉनसन की पुस्तक में इस तथ्य का महत्व इसलिए है कि उपयोगकर्ता किसी नियंत्रण का अर्थ उसके नाम, स्थान, रूप और आसपास के संदर्भ से अनुमान लगाता है। जब डिजाइन इन संकेतों और अपेक्षित परिणाम के बीच मेल रखता है तो सीखने की जरूरत घटती है। जब मेल टूटता है तो उपयोगकर्ता गलत अनुमान लगा सकता है, भले ही इंटरफेस देखने में नया और आकर्षक हो। स्पष्ट अवधारणात्मक मॉडल उपयोगकर्ता को यह समझने देता है कि प्रणाली में कौन सी वस्तुएं हैं, वे कैसे संबंधित हैं और किसी कार्रवाई के बाद क्या बदलेगा। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को बटन जैसा दिखाने पर उसके दबाए जाने योग्य होने की अपेक्षा बनती है। यदि उसी रूप वाली वस्तु अलग व्यवहार करे तो भ्रम पैदा होता है, फिर भी परिचितता का अर्थ अंधानुकरण नहीं है। नई कार्यक्षमता के लिए नए रूप आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन तब संकेत, प्रतिक्रिया और भाषा इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उपयोगकर्ता नया मॉडल बना सके। पुस्तक डिजाइनर को नवीनता और समझने योग्य व्यवहार के बीच यही अनुशासित संतुलन खोजने को कहती है। अंत में ध्यान, प्रतिक्रिया और त्रुटि रोकथाम के आधार पर कार्य प्रवाह बनाना। इंटरफेस का मूल्य केवल उस क्षण में नहीं तय होता जब उपयोगकर्ता कोई बटन पहचान लेता है, वह पूरे कार्य प्रवाह में तय होता है, जहां ध्यान बदलता है, गलतियां संभव होती है और प्रणाली की प्रतिक्रिया अगला निर्णय प्रभावित करती है। पुस्तक के मनोवैज्ञानिक आधार से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजाइन को उपयोगकर्ता को वर्तमान स्थिति, उपलब्ध कार्रवाई और कार्रवाई के परिणाम के बारे में स्पष्ट संकेत देना चाहिए। प्रतिक्रिया में देरी, अस्पष्ट संदेश या बिना दिखाई देने वाले परिवर्तन उपयोगकर्ता को यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आदेश चला भी या नहीं। परिणाम स्वरूप वह कार्रवाई दोहरा सकता है या गलत रास्ता चुन सकता है। त्रुटि रोकथाम के लिए केवल अंत में चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है, बेहतर उपाय यह है कि गलत विकल्पों को कठिन बनाया जाए, आवश्यक सीमाएं पहले से स्पष्ट हों और सुधार का रास्ता समझ में आए। जहां पुष्टि जरूरी हो वहां उसकी भाषा परिणाम और जोखिम के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि सामान्य और यांत्रिक। जॉनसन का दृष्टिकोण यह भी याद दिलाता है कि उपयोगकर्ता का ध्यान हर समय समान नहीं रहता, इसलिए महत्वपूर्ण बदलावों को केवल सूक्ष्म संकेतों में छिपाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। सुगठित प्रतिक्रिया और त्रुटि सहनशीलता उपयोगकर्ता को नियंत्रण की अनुभूति देती है, जबकि प्रणाली की आंतरिक जटिलता को उसके ऊपर नहीं डालती। निष्कर्ष में, डिजाइनिंग विद द माइंड इन माइंड उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो यूजर इंटरफेस के निर्णयों को अधिक ठोस आधार पर लेना चाहते हैं। नए डिजाइनर इसे नियमों की लंबी सूची के पीछे का ढांचा समझने के लिए पढ़ सकते हैं। अनुभवी डिजाइनर इससे अपनी सहज धारणाओं की जांच कर सकते हैं, खासकर तब जब उत्पाद की सीमाएं, विरोधी आवश्यकताएं या अलग उपयोगकर्ता समूह किसी सरल समाधान को असंभव बनाते हों। उत्पाद प्रबंधक, डेवलपर और उपयोगिता परीक्षक भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पुस्तक टीम चर्चाओं के लिए साझा भाषा देती है। किसी स्क्रीन पर बहस केवल व्यक्तिगत पसंद, आधुनिक दिखने या स्थापित परंपरा तक सीमित नहीं रहती, उसे ध्यान, प्रत्यक्षण, स्मृति, अपेक्षा और त्रुटि की संभावना के आधार पर परखा जा सकता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें या तो अत्यधिक अकादमिक होकर दैनिक डिजाइन से दूर हो जाती है, या केवल नियम और उदाहरण देकर उनके कारण अस्पष्ट छोड़ देती है। जॉनसन की विशिष्टता इन दोनों स्तरों को जोड़ने में है। वह मनोविज्ञान का विस्तृत शोध ग्रंथ बनाने के बजाय उतनी पृष्ठभूमि देते हैं जितनी व्यावहारिक डिजाइन निर्णयों के लिए आवश्यक है। पुस्तक को किसी स्थिर मानक के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण अनुप्रयोग के मार्गदर्शक के रूप में पढ़ना चाहिए। यही गुण इसे बदस्ती तकनीक के बावजूद उपयोगी बनाए रखता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेफ जॉनसन PhD, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।